आगे है सूरत जिन। सूरत अलअहकाफ पढ़ाने के दौरान आपको वाक्या सुनाया गया था कि सफरे ताइफ से वापसी पे नबी सल्लम नखला नाम की एक जगह पे जब रुके तो ऊपर से जिन्नों का एक टोला गुजरा, उसने आपसे कुरान सुना और जाकर अपनी कौम को क्या सुनाया, ये अब आप और मैं सुन रहे हैं। पूरी एक जिन की कहानी है, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम كلوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا। ए नबी कहो मेरी तरफ वही भेजी गई है कि जिन्नों के गिरोह ने गौर से सुना, फिर जाकर अपनी कौम के लोगों से कहा हमने एक बड़ा अजीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम इस पर ईमान ले आए और अब हम हरगिज अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। और ये कि हमारे रब की शान बहुत आला अरफा है, इसने किसी को बीवी या बेटा नहीं बनाया। और ये कि हमारे नादान लोग अल्लाह के बारे में बहुत खिलाफे हक बातें कहते हैं। और ये कि हमने समझा था कि इंसान और जिन कभी अल्लाह के बारे में झूठ नहीं बोल सकते। और ये कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से कुछ लोगों की पनाह मांगा करते थे, इस तरह उन्होंने जिन्नों का गुरूर और ज्यादा बढ़ा दिया। और ये कि इंसानों ने भी वैसा ही गुमान किया जैसा तुम्हारा गुमान था कि अल्लाह किसी को रसूल बनाकर न भेजेगा। और ये कि हमने आसमान को टटोला तो देखा कि वो पहरेदारों से पटा पड़ा है। सूरत मुल्क में पढ़ चुके हम लोग। और शहाबों की बारिश हो रही है। और ये कि पहले हम सुनगुन लेने के लिए आसमान में बैठने की जगह पा लेते थे, मगर अब जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करता है वो अपने लिए घात में एक शहाबे साकिब लगा हुआ पाता है। और ये कि हमारी समझ में नहीं आता कि क्या जमीन वालों के साथ कोई बुरा मामला करने का इरादा किया गया या इनका रब इन्हें राह रास्त दिखाना चाहता है। और ये कि हम में से कुछ लोग सालेह हैं और कुछ इससे फरोतर हैं, हम मुख्तलिफ तरीकों में बटे हुए हैं। और ये कि हम समझते हैं कि ना हम जमीन में अल्लाह को आजिज कर सकते हैं और ना भाग कर इसे हरा सकते हैं। इसको हाईलाइट कीजिएगा। और ये कि हमने जब हिदायत की तालीम सुनी तो हम इस पर ईमान ले आए, अब जो कोई भी अपने रब पर ईमान ले आएगा इसे किसी हक तलफी या जुल्म का खौफ ना होगा। और ये कि हम में से कुछ मुस्लिम यानी अल्लाह की इताअत गुजार हैं और कुछ हक से मुंह फेरने वाले, तो जिन्होंने इस्लाम यानी इताअत का रास्ता इख्तियार कर लिया उन्होंने निजात की राह ढूंढ ली, और जो हक से मुनहरिफ हो गए वो जहन्नुम का ईंधन बनने वाले हैं। यहाँ तक देखिए वो जिन की का खुतबा था जो उसने अपनी कौम को बताया। बहुत सी बातें हमारे सीखने की। पहली बात है कि सिर्फ एक दफा की लिसनिंग ने जिंदगी बदल दी। आज भी बाज लोग राह चलते किसी दोस्त के कहने, किसी के बुलाने, बाहर जूतों के देखने से किसी महफिल में आके बैठते हैं और फिर उसके बाद वो कभी ना जाने का इरादा कर लेते हैं। हिदायत का वो लम्हा बहुत कीमती होता है जब इंसान कोई बात सुने और उसका दिल गवाही दे कि ये सच है, बस उसकी कदर कर ले। ये ऐसी है जैसे आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सोचा तो एक महीने का था, लेकिन बहुत सारों को अल्लाह जाने नहीं देगा। ये मुझे आप लोगों के फॉर्म्स देखकर अंदाज़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे और आपको बरकत दे और कभी भी आपको इस कुरान से दूर ना करें। दूसरी बात आप देखिए कि यहाँ से पता चलता है कि इंसानों की तरह जिन्नात भी नबी सल्लम को रसूल मानते हैं। सिर्फ जिन्नात नहीं, सारी मखलूकत की तरफ अल्लाह के नबी नबी बनाकर भेजे गए, ये आपकी एक हदीस से मिलता है। दूसरी बात है जिन्हों ने क्या सुना, कुरान नजबा। पहले कुरान का जाहरी हुसन उनको अच्छा लगा, सुनते गए तो समय नल होदा, फिर हिदायत में बदला। आज भी कुरान सुनाने वालों को इस नुक्ते पे गौर करना चाहिए। नए लोग कुरान की तरफ कब आएंगे, जब आप कुरान को खूबसूरत तरीके से पेश करेंगे, नरम आवाज में, अच्छे माहौल में, इज्जत के साथ उनको बिठाएं, अजब उजब लगे, लोग हैरान हो जाएं कि ये कुरान के साथ कितना एहतमाम। फिर बैठे सुनते सुनते एक दिन आता है कुरान हिदायत की किताब बन जाता है। पहले ही दिन डंडे के जोर पे, गुस्से पे ना सुना तो आग में जाओगे जहन्नमी। याद रखिए इस टोन से लोग दीन की तरफ नहीं आते, वही आएंगे जिनके दिल में पहले से तलब होती है, नए लोगों के दिल में तलब नहीं आती। फिर एक और चीज भी इससे पता चलती है कि कुरान इतने तपाक से उतरा कि अब कोई जिन वहां जाना भी चाहता है तो रास्ता रोक लिया जाता है। आज वही कुरान आपके मेरे घर में है, आज भी तो मेरे आगे भी किताब खुली है ना। सिर्फ एक चंद उसके रुकू या चंद आयतें सुनी होंगी जिन्हों ने, कितना मान कितना फखर। और आज हम इस किताब के लिए दरवाजा खोलते हैं। इमेजिन तो कीजिए कि कुरान को नाजिल करते हुए इतनी हिफाजत और प्रोटोकॉल दिया गया जैसे कोई शाही सवारी नहीं आती। कभी बादशाह वजीर गुजरे तो सारी जगह हटो बच्चों के नारे होते हैं, रास्ते साफ किए जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स फिरते हैं। अल्लाह ने आज कुरान को सिक्योरिटीज में रखा हुआ है क्योंकि वहां से कुरान उतरता है। और आप सोचे एक हेलीकॉप्टर उतरे और बिल्कुल आपके घर के बैकयार्ड में वो जहाज उतरे और उसमें से एक मेहमान उतरे और वो कुरान की सूरत में आपके घर में ठहर जाए, कभी आपको अपने घर उसको अपने घर से निकलने देंगे? आज मेरे आपके दिल के दरवाजों और हमारे घरों के दरवाजों पर ये कुरान नॉक करता है और हम कहते हैं अभी वक्त नहीं, अभी मसरूफ बहुत हैं, अभी संजीदा नहीं, अभी जहनी तौर पे तैयार नहीं है। दुआ कीजिए कि अल्लाह मानने वाला बनाए, और सच रखिए कि जिसने हक को मानना होता है उसे हुज्जतें नहीं सूझती, वो मान जाता है। और इसमें ये भी जिन्होंने बात बता दी कि अल्लाह इस्तकाम वाला तरीका दी, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अगर ये रास्ते पे जमे रहते ना तो हम इनको और देते। इससे पता चलता है चलेंगे तो इस्तकामत आएगी और अगर रुकेंगे तो फिर रुकना आसान होगा। और याद रखिए जिन्नों से डरना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग डरते हैं, हालांकि जिन्नात आपकी हमारी तरह एक मखलूक हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब आखिर में नबी सल्लम को खिताब करके कुछ और बातें बताई गई, फरमाया और ए नबी कहो मुझ पर वही भी की गई कि लोग अगर राह रास्त पर साबित कदमी से चलते तो हम इन्हें खूब सैराब करते। कौन कहता है अल्लाह की तरफ जाने में से जिंदगी खराब है? यह आयत इस बात की दलील है कि जो लोग इस्तकामत से अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं अल्लाह उनको खूब सैराब करते हैं, यानी दुनिया की नेमतें भी बहुत देते हैं ताकि इस नेमत से उनकी आजमाइश करें, और जब अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ेगा इसका रब इसे सख्त अजाब में मुबतला कर देगा। और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, बस इनमें अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। दिल की गहराई से दुआ करें कि मस्जिदों का शिर्क भी खत्म हो जाए, बाकी शिर्क के गढ़ तो हैं, आज कुछ मस्जिदें भी ऐसी हो गई। अल्लाह से दुआ कीजिए कि मस्जिदों को शिर्क और बिदत से पाक कर दे। और ये कि जब अल्लाह का बंदा इसको पुकारने के लिए खड़ा हो तो लोग इस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गए, कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा। ए नबी कहो मैं तो अपने रब को पुकारता हूँ और इसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। तो जब अल्लाह के नबी ने हर हाल में दीन की दावत दी, हमने भी देनी है इंशाल्लाह। कहो मैं तुम लोगों के लिए ना किसी नुकसान का इख्तियार रखता हूँ ना किसी भलाई का। कहो मुझे अल्लाह की गिरफ्त से कोई बचा नहीं सकता और ना मैं इसके दामन के सिवा कोई जाए पनाह पा सकता हूँ। मेरा काम इसके सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह की बात और उसके पैगामात पहुंचा दूँ। अब जो भी अल्लाह और उसके रसूल की बात ना मानेगा इसके लिए जहन्नुम की आग है और ऐसे लोग इसमें हमेशा रहेंगे। ये लोग अपनी इस रविश से बाज ना आएंगे यहां तक कि जब उस चीज को ना देख लें जिसका इनसे वादा किया जा रहा है तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि किसके मददगार कमजोर हैं और किसका गिरोह तादाद में कम है। तकाबुली करते करते दुनिया से चले गए वो लोग जिनके दिल में हिदायत की तलब नहीं थी। क्वांटिटी कॉन्शियस, कितने किधर आते हैं, उसके ग्रुप में कितने आते हैं, उसकी जमात में कितने, उस मस्जिद में कितने, उस मदरसे में कितने। याद रखिए जितने भी आए ये दुआ कीजिए कि हक बात लेकर जाए, कभी तकबर ना करें बहुत सुन रहे हैं, ये फिक्र करें कि आप जो उनको सुना रहे हैं कि लोरियां तो नहीं दे रहे हैं इसीलिए बहुत आ रहे हैं। हक बात सुनाएं और बहुत आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कड़वे हक के बावजूद ज्यादा लोग आ रहे हैं, वरना हक को बदल के डायल्यूट करके अगर ग्रोह भी जमा कर लिए तो कल क्यामत के दिन काम नहीं आएंगे। कहो मैं नहीं जानता जिस चीज का वादा तुमसे किया जा रहा है वो करीब है या मेरा रब इसके लिए कोई लंबी मुद्दत मुकर्रर फरमाता है। वो आलिमुल गैब है, अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता सिवाय उस रसूल के जिसे इसने गैब का इल्म देने के लिए पसंद कर लिया हो, तो इसके आगे और पीछे वो मुहाफिज लगा देता है ताकि वो जान ले कि उन्होंने अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए और वो इनके पूरे माहौल का अहाता किए हुए है और एक चीज को उसने गिन रखा है। वक्सा कुल्ला शयइन अददा, इसको नोट करें, हर चीज की इन्वेंट्री अल्लाह के पास है। कितने बारिश के कतरे, कितने आंसुओं के कतरे जो आंखों से निकले अल्लाह के रास्ते में, और इसी तरह से कितने झूठ और कितनी गिबतें की, एक एक रिकॉर्ड कीप किया हुआ अल्लाह ने बंदे का, कल क्यामत के दिन सब के सामने खोल देगा। अल्लाह हमें हशर के दिन नशर ना करे। तिलावत सुनते हैं।
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
اللہ اکبر. بہت خوبصورت صورت ہمارے سامنے ہے, صورت مزمل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز وحی میں نازل ہونے والی صورت. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ابھی نبی بنے چند دن ہی گزرے تھے یا کچھ عرصہ گزرا تھا. آپ میں سے جب لوگ نئے نئے قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں, لکھیں کہ پڑھیں, سمجھ نہیں آ رہا, سپیڈ نہیں ہے, فوکس نہیں ہوتا, ایک بات لکھتے ہیں دوسری نہیں, یہ نیچرل ہے. یہاں اصل میں اللہ نے بتایا کہ جب دین کی طرف نئے نئے آؤ تو وحی کو کیسے اخذ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو. یعنی اب سونے کے دن گئے, اٹھو. کتنی رات مگر کم, آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لو یا اس سے بھی کچھ زیادہ پڑھا دو, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل سے پڑھنا. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں, اس کو محسوس کیجئے. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی ذات نہیں, بس اسی کو وکیل بنا لو. اور رہ گئی وہ باتیں جو لوگ بنا رہے ہیں تو کیا کرو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو. اس لفظ مجھ کو دیکھے, اللہ کہتے میں نمٹوں گا ان سے. اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا. کبھی مچھلی کا کانٹا پھنسا ہو یا لکما پھنس جائے, پانی کہنا بھی مشکل لگے تو اس کو سوچئے. اور دردناک عذاب یہ ہوگا کب. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں کس بات کی تسلی دی گئی؟ آپ دیکھیے کہ مشکل حالات تھے, ابھی وحی کی عادت بھی نہیں ہوئی تھی اخذ کرنے کی, تو یہاں رات کے قیام کی بات کی گئی. کیونکہ راتوں کو جاگنا اور اللہ سے دکھ سکھ کر لینا دل کو ہلکا بھی کر دیتا ہے, بات اگلے دن سیدھی منہ سے نکلتی ہے اور سکون بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے سلسلے کے آغاز میں کہہ دیا کہ دیکھو مشکل تو ہے, قولاً ثقیلا. کبھی میں اور آپ اللہ کے نبی کا صرف یہ ایک تحفہ جو وحی انہوں نے اپنے دل پہ لی اور ہم تک پہنچائی, اس کا حق دینا چاہے تو نہیں دے سکتے. سخت سردیوں کی رات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے چور ہو جاتے تھے, اتنی تکلیف تھی. یہ قول ثقیل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. کتنے اہتمام سے یہ قرآن نازل ہوا, آپ نے کتنا برداشت کیا. اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کے جا رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے اوپر سورت مائدہ نازل ہونی شروع ہوئی اور پوری سورت اکٹھی نازل ہوئی تھی. کہتی ہیں کہ بوجھ سے اونٹنی کی ٹانگیں یوں ہل رہی تھیں, کانپ رہی تھی. اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کپ کپی تاری ہو جاتی تھی اور آپ کے ماتھے پہ موتیوں جیسا پسینہ آتا تھا. اور سکلے قرآنی سے میری ٹانگ دبنے لگی جب ایک موقع پہ اللہ کے نبی کا سر میرے ران پہ تھا اور آپ پہ وحی کی کیفیت آ گئی. آج ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں, آج ہم اس کی کتنی خدمت کرتے ہیں. آج محفوظ جلدوں میں اتنی خوبصورت شکلوں میں ہمارے سامنے ہیں, हम इसकी इतनी कदर नहीं करते। सहाबा ने इसको खजूर की छाल पे, तख्तियों पे और पत्तों पे लिखा। कहाँ से जोड़ जोड़ करके अल्लाह ने आपके मेरे लिए ये प्यारी किताब जोड़ी है। और आज हम इसको कितना हल्का जानते हैं, सिर्फ एक नो, सॉरी, मुश्किल नामुमकिन। अभी मैं सीरियस नहीं, मैं इन चीज़ों में नहीं आती, मैं नहीं सुनती, मेरा भी माइंड तैयार नहीं। आओ सुबिल्ला, इससे भी कोई बड़ी महरूमी है। जिस किसी को अगर ऐसा फील होना तो वो रातों को कुछ मिनट, चाहे 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट खड़े होकर अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दे। क्योंकि देखिए, अशद व तम व अकवम कीला, नफ्स जो आज दबा नहीं है ना, आज का दौर है इस सरकशी का, नफ्स को दबाने के लिए बेस्ट थिंग रात की इबादत है। जब भी आपको अपने नफ्स से कोई मसला हो, मिसाल है ऐसी उल्टी सीधी बातों का ख्याल आ रहा है, जवानी है किसी लड़के का ख्याल आना शुरू हो गया, कोई बात है शौहर से अलग होने का ख्याल है, तहज्जुद शुरू करें। पूछे अपने आप से, उलझी तो रहती हूँ, परेशान तो रहती हूँ, शौहर के मामले में दुखी तो हूँ, औलाद के साथ हर वक्त मगजमारी करती हूँ, क्या कभी तहज्जुद में जाके इस तरह रोई जैसे पीछे पड़ के आए हजरत नूह राजो न्याज कर रहे थे। ये जरूरत है आपको। और अल्लाह को इतना अच्छा लगता है बंदे का रात को जागना। एक बड़ी प्यारी रिवायत है जिसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा आता है कि अल्लाह को उस बंदे पर खुशी होती है, हैरत होती है, जो खूबसूरत बीवी को पहलू में छोड़कर तहज्जुद के लिए उठा और आपको राजी करने लग गया। तो नरम बिस्तर, गरम बिस्तर। हदीस में आते थे, जब रात का आखिरी हिस्सा शुरू होता है तो अल्लाह ताला पुकारता है, तो आवाजें लगाता है, हल में मुस्तगफिर, कोई है बख्शिश मांगने वाला, है कोई बीमारियों से शिफा वाला, है कोई रिस्क वाला मांगने वाला मैं दूं। और जवाब क्या आता होगा इधर से, खामोशी, अभी तो सोए हैं। दुनिया के मामले में हम कितने तेज हैं और आखिरत के मामलों में हम कितने सुस्त हैं। कोई आपको कहे कि रात को अमेरिकन एम्बेसी से एक आवाज लगेगी, है कोई ग्रीन कार्ड लेने वाला रात को आ जाए, है कोई ब्लू पासपोर्ट लेने वाला आ जाए, मैं कहती हूँ ग्रीन और ब्लू को तो छोड़ दे, कोई पिज्जा कंपनी एक ऑफर दे दे कि आधी रात के बाद पिज्जा फ्री होगा। देखिए जरा आधी रात को बाहर खड़े होते हैं कि नहीं। तो ये जो तबत्तुल है ना, जहनी तौर पे कटना, इसी से हजरत फातिमा का लकब बतूल भी है, सबसे कटी हुई। तो अल्लाह से दुआ कीजिए, व तबत्तल इलैहि तबतीला, अल्लाह हमें सबसे काट कर अपना बना ले। और जब तक ये नहीं करेंगे, इल्म की मिठास भी नहीं मिलेगी। अब इसके बाद थोड़ी सी मजीद बातें, लोगों को एहसास दिलाया गया कि इस नबी जिसकी तुम नाकदरी कर रहे हो, ये कोई छोटी नेमत है। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, तुम लोगों के पास हमने इसी तरह एक रसूल तुम पर गवाह बनाकर भेजा है, जिस तरह हमने फिरौन की तरफ एक रसूल भेजा था। फिर देख लो जब फिरौन ने इस रसूल की बात ना मानी तो हमने इसको बड़ी सख्ती के साथ पकड़ लिया। फिरौन को पकड़ लिया जो अपने वक्त का इतना बड़ा फितना था लोगों के लिए। अगर तुम मानने से इनकार करोगे तो इस दिन कैसे बच जाओगे, हाईलाइट कीजिएगा, यौम यजलुल विलदान शीबा, वो दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। क्यों बूढ़ा कर देगा? या तो लंबा बहुत होगा कि बच्चा पैदा होके बूढ़ा हो जाएगा, अब भी वो दिन ही नहीं खत्म हो रहा, और दूसरी वजह यह कि खौफ की वजह से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। हम कहते हैं ना, फलां चीज से मेरे बाल सफेद हो गए, क्यामत के दिन कोई रहम के जज्बे नहीं होंगे। दुनिया में तो हम एक दूसरे पे तरस भी खाते हैं, वहां तो वो भी नहीं होगा। अगर तुम मानने से इनकार करोगे तो उस दिन कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा और जिसकी सख्ती से आसमान फट रहा होगा। अल्लाह का वादा तो पूरा होकर ही रहना है। और बात यह है कि नहाजिही तस्किरा, ये एक नसीहत है, फमन शा तखज़ाइला रब्बिही सबीला, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले। हम क्या कहते हैं, मेरा नहीं जी चाह रहा, मेरा मूड ही नहीं है। आप तो एक तहाई दो तहाई रात जागते थे और हमारा तो मूड ही नहीं बनता, और अगर जाग जाए तो अगले दिन हमारा मूड बनता कैसा, जले कुटे। याद रखिए, जब तक इन चीजों से मोहब्बत नहीं होगी, दूसरी नेकियां भी आसान नहीं होंगी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। फिर अपने नबी को अल्लाह ताला तसल्ली देते हैं, इन्ना रब्बका यालमु अन्नका तकूमु अदना मिन सुलुसिल लैली व निसफहु, ए नबी, तुम्हारा रब जानता है कि तुम कभी दो तिहाई रात के करीब और कभी आधी रात और कभी एक तिहाई रात इबादत में खड़े हो रहते हो, और तुम्हारे साथियों में से भी ये गिरोह ये अमल करता है। अल्लाह हमें भी उनमें लिख ले। अल्लाह ही रात और दिन के औकात का हिसाब रखता है। इसे मालूम है तुम लोग औकात का ठीक शुमार नहीं कर सकते, बस इसने तुम पर मेहरबानी फरमाई। अब जितना कुरान आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ लो। फकराउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना पढ़ सकते हैं। कितनी पढ़नी चाहिए आयतें? जो रात के सेशंस अटेंड करें वो बताएंगे, 100 आयतें। किस किस सूरत को मिलाएं तो 100 हो जाती हैं। अम्मा यतसालून, नाजियात और अबसा वतवल्ला, तीन सूरतें जमा कर लें 100 आयतें हो जाती हैं। और यकीन करें 10-10 मिनट में हम पढ़ सकते हैं एक एक सूरत, इससे भी कम पे बल्कि। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे पढ़ने की रफ्तार ऐसी कर दे कि हम पढ़ें, गौर करें, समझें और पढ़ के कभी भी न थकें। इसे मालूम है तुम में से कुछ मरीज होंगे, कुछ दूसरे लोग अल्लाह के फजल की तलाश में सफर करते हैं और कुछ और लोग अल्लाह की राह में जंग करते हैं। फकरौ मा तयस्सर मिन्हु, बस जितना कुरान बासानी पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो। वाकीमुस्सलात वातुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। वक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, और अल्लाह को अच्छा कर्ज हसन देते रहो। फिर मक्की सूरतों में कर्ज हसन की बात आ गई। शायद कुरान पाक में 4 से ज्यादा मुकाम पे तो ये कर्ज हसन का लफ्ज आता ही है। दोगे तो क्या होगा? वमा तुकद्दिमु लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे इसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे, वही ज्यादा बेहतर है और इसका अजर बहुत बड़ा है। अल्लाह से मगफरत मांगते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। आप देखिए कि इस कॉल को सुनकर कौन खुश होगा और कौन चिढ़ेगा। बार बार कॉल खर्च की खर्च की, और सच पूछें तो अल्लाह को जरूरत है आपके मेरे खर्च की। वो खाता है, वो पहनता है, ओढ़ता है। असल ये एहसास दिलाता है कि जो तुम भेजोगे वो आगे मिलेगा। आप देखिए कि आपने यहाँ से पाकिस्तान जाना हो, PIA ने कहा अच्छा भी 30 किलो ले आओ, आपने माशाल्लाह सारा साल शॉपिंग की, आपका तो 80 किलो है, तो क्या कहते हैं? कोई जाने आने वाला मेरा एक सूटकेस ले जाएगा? एक ले जाओ दूसरा, किस उम्मीद पे जाएंगे तो वहां पहुंचे होंगे। और अपनी महीनों की शॉपिंग को आप यहाँ एयरपोर्ट वालों के हवाले क्यों कर देते हैं कि जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो वो बेल्ट पे घूमता हुआ आएगा सामान। मैं इस आयत को पढ़ती हूँ तो मुझे वो बेल्ट घूमती हुई नजर आती है। वमा तुकद्दिमु लिअन्फुसिकुम, यहां भी क्लेम होते हैं। वो क्या देंगे क्लेम में आपको? अगर वहां अपनी किसी नेकी को मिसिंग पाया, तुम जाके क्लेम फॉर्म फिल कर सकते हो। किधर है अल्लाह मेरी नेकी, किधर है मेरी एक पैनी, और किधर है मेरा एक पैसा? तो दिल खुलेगा तब जब ये सोचेंगे वहां जमा हो रहा है, अगले घर की चीजें तैयार हो रही हैं, अगली दुनिया के लिए। अल्लाह से दुआ करते हैं हमें अपनी जात पे अल्लाह के रास्तों में लगाने वाला बना दे। तिलावत सुनते हैं थोड़ी सी।
إن ربك يعلم أنك تقوم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور.